उसके लिए ये पहला वाकया जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सबब बना, ये ज़ाहरी तौर पे सबब बना। वाइल्ला अल्लाह सुबहान तआला ने यह आयात उम्मत के सुपुर्द करनी थी और कुरान के तौर पे नाजिल फरमानी थी, लेकिन जो मौका और महल है उसके लिए ये वाकया जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सबब बना। चूँकि 7 हिजरी को सुलह हुदैबिया मुसलमान उसी तरह वापस पलट गए, 8 हिजरी को मक्का फतह हो गया और मुसलमानों ने उनके साथ ही मरासम अंजाम दिए, और 9 हिजरी को मुसलमान ने मरासम अंजाम दिए लेकिन ऐलान कर दिया गया कि अब शिर्क से पार की जाए। सूरह तौबा, सूरह बरात या ये इब्तदाई आयत, बरातुन मिन अल्लाह व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिन अल-मुशरिकीन, या ये के बाद में फसीहु फिल अर्द अरबाताशहरिन, ये जो आयत हैं ये 9 हिजरी को नाजिल हुई हैं, 8 हिजरी को नहीं। लेकिन 8 हिजरी को एक फतेह मक्का के बाद एक वाकया रूनमा हुआ और उस वाकये से शदीद बदमजगी फैली। उस वाकये की वजह से मुसलमानों के अंदर इस चीज़ का तकाजा बढ़ गया कि ये जो बातिल रविशें हैं, इनहराफी जो तौर तरीक़े हैं मुशरिकीन के दरमियान, इससे अव्वल फुर्सत में छुटकारा पाया जाए। लिहाजा 9 हिजरी को ये आयात नाजिल हुई और उसी तरह से मुशरिकीन के हमरा हज किया गया, और फिर 10 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा करार दिया, और ये जो हज था आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया था, इसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को शिरकत की दावत दी गई और करार ये दिया गया कि जो आ सकता है हज पर वो आए, घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आखिरी साल मुसलमानों के एक जम्मे गफीर पे मक्का में आया और आबादी भी उसमें 1 लाख या इससे ऊपर की मुमकिन है कि हज के मौके के ऊपर उस वक्त बनी हो। आए हम इस वाक़े को देखते हैं जो 8 हिजरी को हुआ, 9 हिजरी को फिर इसी वाक़े का इजाला करने के लिए और मुशरिकीन की निजासत शिर्क से इज्तनाब के लिए आयात नाजिल हुई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के वजीर सुपुर्द की कि वो इसको अंजाम दें। हम इस वाक़े को मुकम्मल करें कि लम्मा फतह मक्का, जब मक्का फतह हो गया, लम यमना अल मुशरिकीन अल हज फ तिल्क सना, तो इस साल में मुशरिकीन को हज से मना नहीं दीन इस्लाम ने किया। अरबों में एक सुन्नत राइज थी, वो क्या थी कि उन्होंने मक्का में दाखिल हो के अगर बैतुल्ला का तवाफ़ करना है तो जिस लिबास में तवाफ़ किया वो उसे अपने हमरा नहीं रख सकते, ज़रूरी है क्या करें, उसे सदका दे दें। वला यल्बिसून बाद तवाफ़, तवाफ़ के बाद दुआ ना अपने पास रख सकते हैं ना लिबास पहन सकते हैं, हर दो काम नहीं कर सकते, यानी अपनी मिल्कियत से भी उन्होंने निकालना है और उसको तसरुफ में भी नहीं ला सकते। बस जिस मुशरिकीन में ये तवाफ़ के दौरान ये एक बुरी रविश राइज थी, किसी भी साल के किसी भी हिस्से में आप मक्का आएँ और बैतुल्ला का तवाफ़ जिस लिबास में किया वो लिबास अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि क्या करेंगे, वो या सदका दे देंगे या अपने हाथ से बस निकालेंगे, बहरहाल अपनी मिल्कियत से उसे निकालेंगे। वकुल्ल मन वाफ़ मक्का यस्तईरु सौबन, जो शख्स भी मक्का आया करता था वो फिर इस्तियारतन एक कपड़ा ले लिया करता था, यानी उधर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थीं, उन दुकानों से वो ले लेते और अपनी कोई चीज़ रखवाते थे कि ये तुम रखो और ये लिबास दे दो। चूँकि ज़रूरी तो रवाज किया था कि आपने जिस लिबास में तवाफ़ किया उसे अपने हाथ से निकालना है, सही है, तो इसके लिए फिर वो दुकानदार लिबास रखते थे और पैसों पर दे देते थे, ठीक है तुम ये लिबास ले लो, इस्तियारतन अपनी कोई चीज़ हमारे पास रखवाओ और मुमकिन है कोई पैसे भी वो दरमियान में मामला करते हैं। बहरहाल वो फिर अपना लिबास जो पहना होता था वो इस दुकानदार या अफराद को देते और इनसे किराए के ऊपर वो ले लेते थे दूसरा लिबास, उस लिबास में तवाफ़ करते और तवाफ़ के बाद वो लिबास उन्हें वापस कर देते, और इस तरह से उनके ये दोनों अमर पूरे हो जाते, एक तो उन्होंने वो लिबास जिसमें तवाफ़ किया वो अपने पास नहीं रखा और अपनी मिल्कियत यानी अपने हाथ से भी उसे निकाल दिया। तो ये होता था कि वो फिर उसमें तवाफ़ कर लेते थे आरियतन, जो लेते थे आरियतन लिबास को ले कर तवाफ़ करते, थुम्मा यरुद्दुहु, उसे पलटा देते थे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है जिसके पास किराए के पैसे भी नहीं है कि वो किराए के ऊपर लिबास ले ले, और लिबास भी उसके पास एक ही है, वो क्या करता था, वल्लम यजिद, जो नहीं लिबास पहन पाता था, यानी नहीं वो आरियतन लिबास या किराए के ऊपर ले सकता, लम यजिद आरियतन एक तरह सियाबन, यानी आरियतन इस जगह पे आरियतन और किराए को हमें थोड़ा जुदा समझने की ज़रूरत है, दोनों कलेमा चूँकि रवायत में आ रहे हैं। आरियतन ये होता है कि आपने कोई चीज़ अपनी किसी के पास रखवाई और उससे कहा मैं ये किताब जो है, मसलन आपने कहा कि मैं मुझे ये आप किताब कुछ दिनों के लिए दे दें, मैं पढ़ के आपको वापस कर देता हूँ। ये जो आपने किताब उससे ली है, इसे हम ये कहेंगे कि ये आरियतन ली है। अगर आप उसके बदले में कुछ रखवा भी देते हैं तो जो रखवाया वो रहन शुमार होगा, सही है। और रहन का मामला इसी तरह होता है कि मैं आपसे एक चीज़ लेता हूँ और लेने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं इतनी मुद्दत के बाद आपको ये पलटा दूंगा, वो कहता है कि आप मेरी जो चीज़ है वो कीमत रखती है और नहीं मुझे भरोसा कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी, कोई चीज़ मेरे पास रखवाएं, तो मैं वो फिर कोई उसी वो जिसके ऊपर राज़ी हो, यानी बाहमी फरीकैन राज़ी हो, वो एक चीज़ रखवा देते हैं। इस मामले को क्या कहते हैं, रहन। एक चीज़ होती है आरियतन ले लेना, यानी मैंने पढ़ने के लिए किताब लिया फिर मैं वापस कर दूंगा, मैंने मतलब कुल्हाड़ा लिया है मैं लकड़ियाँ काट के आपको वापस कर दूंगा, इसे कहते हैं आरियतन लेना। इसमें आपने मामला नहीं किया कि मैं आपको कोई पैसा दूंगा या दीगर चीज़ें लूँगा। तीसरा मामला होता है किरायतन। किराया दर हकीकत अरबी का ही लफ्ज़ है कि उसमें यह होता है कि आप एक चीज़ लेते हैं और उसको उसके इस्तेमाल के ऊपर बाहमी रजामंदी से एक रकम मुअय्यन करते हैं जो आप उसे देंगे, यानी वो आपको सहूलत देता है या एक चीज़ देता है कलील मुद्दत के लिए जिसे आपने पलटाना है, लेकिन उसको इस इस्तेमाल के बदले में वो आपसे पैसे का मुतालबा करता है, इसे क्या कहते हैं, किराया। जैसे पाकिस्तान में आम चलता है कि दुकान या घर आपने किराए पे ली, यानी मिल्कियत किसी और की है वो घर, आप एक मुआहदे के तहत एक मुद्दत के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मुआहदा यह है कि हर महीने आप उस इस्तेमाल करने या अपनी मिल्कियत ज़ेर मिल्कियत रखने के उसको बाइनवान किराया एक रकम देंगे। बस ये तीन इनवान अलग अलग हो गए, एक रहन हो गया, एक आरियतन हो गया और एक किरायतन हो गया। अब इधर इनके पेश नज़र असल नुक्ता क्या था कि कपड़े को अपने पास से निकालना है जिसमें तवाफ़ किया। तो अगर किसी के पास दो जोड़े होते थे, कई ऐसे अफराद आते थे उनके पास कई जोड़े होते थे, लिहाजा वो दो जोड़े लेके आते, एक को साइड पर रखते थे, तवाफ़ किया, जिसे तवाफ़ किया वो बदल तब्दील करके वो कपड़ा किसी फ़कीर को सदका दे दिया, सही है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर किसी के पास नए लिबास होते थे, एक ही लिबास है ही उसके पास एक, तो वो फिर मांगता था आरियतन। बाज़ लोग सखी मिजाज होते हैं, वो दे देते थे, ठीक है तुम ये लिबास में कर लो फिर मुझे दे देना, वो फिर उनके लिबास में तवाफ़ करता और फिर कपड़े वो जो एक कपड़े बदल के दे देता। अगर आरियतन नहीं पाता, चूँकि बिलाखिर लोगों के पास आरियतन देने वाले कलीली मकदार होगी या ख़ास मकदार होगी वो ख़त्म होगी, ज़्यादातर लोगों ने आरियतन ले लिए, तो फिर दुकानें बनी हुई थी, वो किराए के ऊपर लिबास दिया करते थे, वो किराए के ऊपर लिबास ले लेता, तवाफ़ करता और जो किराया आपस में तय होता वो मकदार दे के अपना लिबास वापस ले लेता। अब इधर ये तीन तरीके उनमें चल रहे थे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है वमन लम यजिद आरियतन वला किराअन, जो आरियतन भी नहीं ले पाया और किराया भी नहीं दे पाया क्योंकि लिबास ही ख़त्म हो गया तो रश बढ़ गया, वलम यकुन लहू सऊबुल वाहिदुन, और उसके बाद एक से ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है, उधर से तवाफ़ अगर इसमें कर लिया तो फिर वो ये पहन नहीं सकता, तो कहाँ पर ज़्यादा उसके लिए फुर्सत मौजूद है, आया वो लिबास पहन के तवाफ़ करें तो फिर लाजिम क्या होगा उसके लिए, सदका दे दे या उतार दे, पहन नहीं सकता, इसलिए अब एक ही लिबास है तो फिर वो इस तरह हिसाब किताब करता था, तवाफ़ थोड़ी देर का है मैं लिबास को साइड पे रख के बेदूने लिबास तवाफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर लिबास के ज़रिए किया और फिर मैंने वो सदका दे दिया तो इतना लंबा सफ़र बेदूने लिबास तो नहीं कर सकता ना, या वापसी मैं लिबास में तो नहीं जा सकता, लिहाजा वो क्या करता था, तौफ़ बिल बैत उरियानन, بدون لباس طواف کیا کرتا تھا کعبے کا۔ یہ ان میں ایک عام چیز تھی، رائج تھی، ان کے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں تھی۔ اس لیے افراد ہر قسم کے آتے تھے، بعض زیادہ لباس ہوتے تھے تو صدقہ دے دیا کرتے اور اپنا لباس پہن لیتے تھے، بعض آریتن لے لیتے تھے، دوست احباب جان پہچان کے افراد ہوتے ہیں وہ لے لیتے تھے، اور بقیہ افراد کرائے پہ لیتے تھے۔ لیکن غربت تھی، بہت سارے لوگوں کے پاس کرائے کے پیسے ہوتے ہی نہیں تھے، کرائے والے دیتے بھی نہیں تھے۔ فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة، تو اس اثنا میں پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب میں سے ایک خاتون آئی جس کی ظاہری جو شکل و شمائل تھے وہ خوبصورت اور جمیل تھے۔ فطلبت ثوبا عارية او قراءا، پہلے تو اس نے تلاش کیا کہ اسے عاریتاً لباس مل جائے یا کرائے کے بدلے میں لباس مل جائے۔ فلم تجد ہو، لیکن دیکھا کہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا، یعنی عاریتاً لینے والے دینے والے افراد جان پہچان کے نہیں ہیں کہ کوئی اسے فری میں لباس دے دے اور وہ پہن کے حج طواف کر لے، اور عاریتاً بھی کرایتاً بھی چلے گئے ہوئے تھے، چونکہ مقدار ہوتی ہے دکانداروں سے، بقیہ لوگوں نے لے لیا، رش ہوگا اس ٹائم۔ فقالوا لها، تو انہوں نے کہا ان تفتی فی ثیابک، تیرے پاس ایک ہی لباس ہے، اس لباس میں تو نے اگر طواف کیا احتجتی ان تتصدقی بها، تو تیرے لیے لازم ہو جائے گا کہ تو اس لباس کو صدقہ دے۔ فقالت وکیف اتصدق بها وليس لی غیرها، میرے پاس تو ایک لباس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیسے میں صدقہ دوں؟ لہذا وہ پریشان، کیونکہ ایک طرف معاشرہ کھڑا ہے اور ایک طرف خاتون کی اپنے ناموس اور حیا ہے، تو اس نے معاشرے کا مقابلہ کرنے کی اس میں سکت نہیں رہی۔ فطافت بالبیت عریانۃ، تو اس نے بدون لباس برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ واشرف علیہ الناس، اور لوگ بار بار اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ فوضعت احدی یدیہا علی قبولہا والاخرى علی دبرہا، اور اس نے اپنے آگے اور پیچھے بس ہاتھ رکھ کے اپنے مقام اور شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا۔ فقالت مرتجزتن، اور پھر اس نے ایک اس اثنا میں شعر پڑھا۔ فلما فراغت من الطواف، جب طواف سے فارغ ہو گئی، خطبہ جماعتن، تو ایک پوری جماعت لوگوں کی آئی اور انہوں نے خواہش کی کہ مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فقالت ان لی زوجن، اس نے کہا میں تو پہلی شادی شدہ ہوں، میرا تو شوہر ہے، میں کنواری نہیں ہوں، شادی شدہ خاتون ہوں۔ تو اس سے ایک اور برا تاثر جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر ابھرا۔ تو یہ واقعہ مسلمانوں کے اندر یا اس وقت لوگوں کے درمیان شہرت پا گیا، اور بڑی اس نے بدمزگی اس کی وجہ سے پیدا ہوئی اور بڑی بدمزگی اس سے پھیلی۔ لہذا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر آیات نازل ہوئیں تاکہ ان بری روشوں، کیونکہ ان روشوں کی اساس مشرکین ہیں، شرک کی وجہ سے اس طرح کے فحش اور غیر اخلاقی غیر انسانی اعمال کے اوپر مشتمل رواج جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اساس کے اوپر معاشرے کے اندر رواج پھیلانے کو قبول کیا ہے، اس لیے ہر وہ رواج جو دین اسلام یا انسانی کرامت سے ٹکراتا ہے دین اسلام نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا یا منع اس سے فرما دیا۔ بس اس ان دو نقطوں کو ہم ادھر پیش نظر رکھیں، کیونکہ یہ واقعہ تفاسیر میں وارد ہوا ہے، صرف تفسیر قمی سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، بقیہ تفاسیر کو ہم ابھی نظر انداز کرتے ہیں۔ کہ 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، کیونکہ مشرکین مکہ کے جو انحرافی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی بہت سارے افعال اور رواج تھے وہ معاشرے کو جکڑے ہوئے تھے۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر قبیح اور اس قدر غیر اخلاقی غیر انسانی رواج وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو ادھر ہمارے پاس اس کا قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں واضح جواب یہ ہے کہ چونکہ جب بھی شرک کی آلودگی، نفاق اور فسق کی آلودگی ایک معاشرے کے اندر پھیل جائے گی، تو اس کی اساس میں جو معاشرے کے اندر رواج جنم لیں گے وہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی اور کرامت و عزت انسانی کے برخلاف ہوں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ तमाम हमारे माशरे में वो रवाज कि जो इलाकाइत की असास पर या कौमियत की असास के ऊपर वजूद में आए हैं, हमें इस तरह की बहुत सारी इनहराफी चीज़ों की वहाँ पर आदात और रवाज और तौर तरीके रस्म रवाज हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे रस्म रवाज दिखाई देते हैं, हत्ता इबादात के नाम से बहुत सारे लोगों ने इनहराफी रवाज ईजाद किए हुए हैं। बस ज़रूरत इधर क्या है, अव्वल वहदानियत और तौहीद इसको मरकज़ बनाया जाए, इसको सरजमीन और असास बनाया जाए। नंबर दो, इंसानी करामत और इंसानी इज्जत को पामाल ना किया जाए। लिहाजा दीन इस्लाम रवाज ईजाद करने की इजाज़त देता है, लेकिन ऐसे रवाज की इजाज़त नहीं देता जो तालीमात इस्लामी से टकराए या इंसानी करामत से और इंसानी शराफत से टकराए। आए अब हम आगे एक और रवायत इसी के ज़िम्न में मुलाहिजा करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अमरानी, कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अल्लाह की जानिब से पैगाम पहुँचा दूँ। व अल्ला यतूफ़ बिलबैत उरियान हूँ, और बरहना हो कि मैं काबे का तवाफ़ नहीं करना, यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करना, और मस्जिद हराम के करीब कोई मुशरिक इस साल ना जाए। अलबत्त इसका भी बैकग्राउंड आपकी खिदमत में अब बयान कर दिया जाए, चूँकि ये वाकया हो गया, इस वाकये की वजह से अल्लाह सुबहानो ताला ने फिर तशरी बाज़ नाजिल की, तशरी यानी शरीयत के अहकाम, और बाज़ दस्तूरात के तौर पे इसे ज़िक्र किया, दस्तूर यानी ऑर्डर हुक्म जारी किया कि मुशरिकीन के ऊपर पाबंदी लग जाए। इसलिए तौहीद की असास के ऊपर फिर अब वहाँ पर हज होगा, एहराम का बांधना, तवाफ़ के, क्योंकि कुरान ने इनके इनहराफी नज़रियात आमाल जो हैं, इनहराफी नज़रियात नहीं आमाल, वो ज़िक्र किए हैं। मसलन फारिग हो के दीवारों की पुश्तों से जाते थे, दरवाज़ों से नहीं, पुश्तों से क्या मुराद, अब वो दीवार फलांग के अंदर जाना है, आपने दरवाजे से अंदर नहीं जाना, तो वो अजीब मंजर भी अजीब सा है कि तवाफ़ बिल आखिर करके आया, अक़ल में इजाफा होना चाहिए, इसकी तो रही से ही अकल भी चली गई कि वो जो अल्लाह इतना बड़ा दरवाज़ा है और जिससे गुजर सकता है उसने, उसकी बजाय दीवारें भी उस दौर में लंबी होती थीं, तो दीवार फलांग के या खिड़कियों से अंदर दाखिल होना है, ये एक रवाज है जी बैतुल्ला के हज के इनवान से उनके अजीबोगरीब रवाज मौजूद थे। दूसरा वाकया जो कि शान नज़ूल के इनवान से है, इसमें मैं आपकी खिदमत में बाज़ अहले सुन्नत कुतुब से हमें इधर सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आयात 9 हिजरी को नाजिल हुई, 8 हिजरी को तो वो मरासिम मुमकिन है हज ना मुसलमानों ने किया हो, उम्रा किया, और क्योंकि ये तवाफ़ से ताल्लुक़ रखती है, इसका हज से ताल्लुक़ नहीं है इस वाक़े का जो अभी आपके सामने बयान हुआ, लेकिन आपने इसमें मुलाहिज़ा किया कि ये वाकया पूरे के पूरे अरब में मारूफ हुआ और इस कबाहत को दूर दीन इस्लाम ने आके किया कि बरहना हो के तवाफ़ नहीं होना चाहिए, यानी अगर किसी के पास माल नहीं है, आरियतन नहीं ले सकता, किरायतन नहीं ले सकता, लाजिम है तब भी कि वो लिबास पहन के वो करे, एहराम लिबास करार दिया गया, और वो भी फिर एहराम के अहकाम हैं। अब 8 हिजरी तक तो मुसलमानों ने सारी चीज़ों को देखा, 9 हिजरी को आए हैं, 9 हिजरी को अब हज पुरजोर पुर जोश तरीके से करने मुसलमान जा रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने वहाँ पे जाना नहीं गए और कबूल नहीं किया जाने को। अच्छा, इस असना में कुरान की आयत नाजिल हो गई। ये जो आयत नाजिल हुई, इब्तदाई 9 आयत हैं, 10 आयत हैं, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि इब्तदाई आयत, ये जो इब्तदाई आयत थी नाजिल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर को कहा कि वो जाएं इन आयत को लेके और मुशरिकीन के दरमियान इन आयत को पढ़ के मक्का में सुनाएं। अब इसका चूंकि बयान आगाज़ जो है वो ही आगाज़ बड़ा सख्त है, बराअतुन मिन अल्लाह व रसूलिही इलल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन ने जितने अहद व पैमान बांधे हैं उन सब से अल्लाह और उसका रसूल बेजार है, बरी है, यानी उसकी अब कोई कीमत और कोई हैसियत नहीं है। और फिर आगे है कि ये 4 महीने जिनसे मुआयदा किया है वो उनसे मुआयदे की मुद्दत है, जिन्होंने तोड़ दिए थे मुआयदे उनसे आपका ताल्लुक़ भी तोड़ दिया जाए और मुशरिकीन का दाखला बंद किया जाए। अब ये आयात का मज़मून है कि अभी आयात आपकी खिदमत में ज़िक्र की जाएंगी। तो खलीफ़े अव्वल जो हैं उनके हमरा इन आयात को दिया और उनके साथ गालिबन हज़रत अबू हुरैरा भी हमरा थे, क्योंकि अहले सुन्नत कुतुब में ज़्यादातर अबू हुरैरा से ये रवायात नकल हुई हैं। तो ये लोग जब एक जगह के ऊपर पहुँचे तो पीछे से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम पहुँचाया कि ये आयात दे दी जाएँ और ये आके अब आयात को ले के जाएँगे। क्योंकि जब हज़रत अबू बकर को रवाना कर दिया तो जनाब जबरील आए और उन्होंने कहा कि इन आयात को या आप ख़ुद जा के पढ़ाएँ या जो आप में से हो, यानी वो आप से ताल्लुक़ रखता हो, आप में से हो, वो जाके पढ़ाए, इन आयात को पढ़े, कोई और नहीं होना चाहिए। तो फौरन इमाम अली अलैहिस्सलाम को पीछे भेजा, रास्ते में ही हज़रत अबू बकर से उन्होंने आयात ली और गए और वहाँ पे फिर उन आयात को पढ़ के सुनाया। इस मौजू को अहल सुन्नत की मुतअद्दिद कुतुब में ज़िक्र किया गया है, मैं आपकी खिदमत में इनमें से एक दो कुतुब से ज़िक्र कर देता हूँ। एक किताब है, चूँकि हमारे यहाँ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुतुब में भी ये रवायात वारिद हुई हैं, लेकिन दोनों मसादिर से इस्तफादा करते हुए इस वाक़े को हम देख लेते हैं। अल अमवाल किताब है मारूफ, अहले सुन्नत के अंदर ये किताब मारूफ है, कासिम बिन सलाम की 224 हिजरी की बहुत कदीमी किताबों में से, आइमा अलैहिस्सलाम के ज़माने की है ये। इसमें जो मुजाहिद हैं इब्ने जुरैज मुजाहिद से नकल करते हैं, मुजाहिद ये बड़े कुर्रा में से और मुफस्सरीन में से शुमार होते हैं, हत्ता के अहले सुन्नत थे, ताबी थे या तबे ताबीन में से है, लेकिन शिया सुन्नी दोनों में इनका एहतमाम किया जाता है। तो मुजाहिद ज़िक्र करते हैं कि ये जो अल्लाह सुबहान व तआला का फरमान है कि बराअतुन मिन अल्लाह व रसूलिही लिल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन, तो फरमाए कि जो अहद जिनसे बाधा हुआ था वो थे खुजाआ एक कबीला है, मुदलिज एक कबीला है, और मनकान लहू अहदुन मिन गैरिहिम, और इनमें से जिनसे इनके अलावा जिनसे बांधा गया था। अच्छा, इसमें जी हाँ, फिर वो ज़िक्र आगे करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे तबूक से फारिग हुए और हज का इरादा किया तो मुशरिकीन भी चूँकि आते थे और वो उनमें से बहुत बड़ी एक तादाद जो थी वो बरहना तवाफ़ किया करती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तवाफ़ करने के लिए तवाफ़ करने वालों के दरमियान पसंद नहीं करते थे कि वो तवाफ़ करें, लिहाजा उस सूरत में उन्होंने फिर भेजा तवाफ़ के लिए, मुसलमान तो गए, लेकिन इस ज़िम्न में खलीफ़े अव्वल और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनको भी भेजा गया। अब इसके बाद वो फिर बाज़ अहादीस को नकल करते हैं कि जैसा कि ये सही हब्बान में भी है और दीगर कुतुब में भी है, आपकी खिदमत में एक दो किताबों से इसका तذکرہ किया जाए। जी हाँ, सही हब्बान में इस तरीके से ज़िक्र है, चूँकि बाज़ अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उसमें ये वाक़या मुख्तलिफ़ थोड़े से मुख्तलिफ़ हालात के साथ आए, चूँकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत अमूमन पोशीदा की जाती है तो वो इस हिस्से को फरामोश कर देते, इतना बस बयान करते हैं कि खलीफ़े अव्वल और इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्होंने भी उस साल मसलन हज किया था, बस इतना सा वो उसे ज़िक्र कर देते हैं, जबकि ये जो नुक्ता है इसको बाज़ुकात वो नज़रअंदाज जान के उस तशरीह के दरमियान कर देते हैं और सिर्फ इतना ज़िक्र करते हैं कि ये आयात नाजिल हुई, लेकिन वो पूरा शान नज़ूल जो कि ख़ुद मुख्तलिफ़ कुतुब में भी वारिद हुआ है और शिया सुन्नी कुतुब में, उसको नज़रअंदाज करते हैं कि ये ना बयान हो। जैसे बुखारी ने इसको ज़िक्र किया कि यह आयत नाजिल हुई सूरह बरात, लेकिन इस वाक़े को नकल नहीं किया। तो अगर मेरे सामने वो हवाला निकल जाता है, चूँकि जो हवाले थे उनमें से बाज़ आगे पीछे हो गए हैं, तो फ़िलहाल सामने नहीं है कि जो अहले सुन्नत में हमारे सामने हो। मसलन हाँ, एक हम किताब में से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, इमाम शाफ़ी ने ये ज़िक्र किया है कि जब अहले इस्लाम कवि हो गए और अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर शरीयत को नाजिल किया, इस्लाम को नाजिल किया, तो ग़ज़वे तबूक से लौटते हुए ये आयात नाजिल हुई, सूरह तौबा की, बरातुन मिन अल्लाह व रसूल ही। फ़अरसल बिहादिल आयात मा अली इब्न अबी तालिब, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमरा इन आयात को भेजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़क़रअहा अला नास फिल मौसम, मौसम कहते हैं हज के अय्याम, हज के मौके के ऊपर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा, इसकी तिलावत फरमाई। फिर आगे वही उसी का हुक्म है कि जो नीचे आयात आ रही हैं कि उन आयात को हम देखेंगे। इसी तरीके से बकिया भी अहले सुन्नत की कुतुब में, क्योंकि ये जो बयान किए ये मारिफत व सुनन वल आसार में ये बात वारिद हुई है। अलबत्ता इसमें सिर्फ इतना सा तस्करा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो इन को लेके गए, इन आयात को लेके गए और उन्होंने इसको पढ़ा, लेकिन इस चीज़ का तस्करा नहीं किया कि खलीफे अव्वल उनसे ले ली गई। बहरहाल हम बाज़ मकतब अहल बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाली अगर हम देखें रवायात को, तो उन रवायात से इस्तिफादा करते हैं, क्योंकि ये रवायात हमारी मुख्तलिफ कुतुब में वारिद हुई हैं और रवायात से हम एक इसे तफसीर रवाई के बाब से भी कहा जा सकता है कि बयान किया जाए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाअथ अबा बकरिन बिबराअतिन, बिबराअता, ये जो सूरह बरात है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को पहले भेजा। हत्ता बलगल जुहफा, जुहफा के मकाम पर जब पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुलाया और भेजा उनके पीछे, और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको पा लिया। फ़ादरा कहूँ, फिर खलीफे अव्वल ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया है, अनज़ला फ़ी शैउन, क्या मेरे बारे में कोई ऐसी सूरा या आयत नाजिल हुई है कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे लेने का ये तकाजा किया है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आपके बारे में कोई आयत नाजिल नहीं हुई, वलकिन ला युअद्दी इल्ला नबीयहू व रजुलुन मिन्हु, इसे कोई नहीं अदा कर सकता सवाए उसके कि जो नबी से खुद नबी हो और रजुलुन मिन्हु, या ऐसा शख्स हो कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, यानी उनकी हस्ती से ताल्लुक़ रखता है, उनकी हकीकत से ताल्लुक़ रखता है। वह अख़ज़ा अली अस्सहीफ़ता, वो आयात जिस सफ़े पर लिखी हुई थी वो सफ़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ले लिया। वह अतल मौसम, मौसम और हज के उस मौके के ऊपर तशरीफ़ लाए। वह कहना यतूफ़ फिन्नास, और फिर लोगों में वमाहुस सैफ़, लोगों के साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ करते रहे और तलवार के हमरा उनके ये मौजूद था। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों के दरमियान खड़े होके ये आयात पढ़ी, और फिर ये अर्ज़ किया, आयात पढ़ने के बाद फिर ये अहकाम भी ज़िक्र किए कि फ़ला यतूफ़ फ़िल बैत बाद आमिन हादा, इस साल के बाद कोई शख्स भी तवाफ़ नहीं करेगा, हादा उरियानुन वला मुशरिकुन, ना बरहना हो के कोई करेगा तवाफ़ और ना हालत शिरक में करेगा। फमन फ़अला, जिसने भी हालत बरहनगी की हालत में, बरहना हालत में अगर किसी ने तवाफ़ किया या हालत शिरक में मुशरिक कोई हो तवाफ़ किया, तो फ़इन्ना मुआतबतना इयाहु बिस्सैफ़, तो हम इसी तलवार के साथ हम उसे सबक सिखाएंगे या उसको सजा देंगे। और फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया वकान यबअथुहु इलल असनाम फकसरहा, के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को फिर भेजा और वो सारे बुत वगैरह तोड़े। और फिर आगे इस तरीके से हुक्म है। और इस मौरिद में ये भी फरमाया था कि अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद खलीफा हैं और मेरे बाद कोई और नबी नहीं है, वही नस्बत है जो मूसा को हारून के साथ थी। ये आपने वाकया मुलाहिज़ा किया कि ये वाकया तहकीकी तौर पे कई कुतुब में वारिद हुआ है, कि हम इसी के ऊपर इक्तफा करते हैं कि जो आपकी खिदमत में ज़िक्र किया गया है। लेकिन इसके अंदर तीसरा नुक्ता जो हमारे लिए इसी तफसीर रवाई के बाब से आता है और अहमियत का हामिल है, वो ये नुक्ता है कि इसमें अहकाम जुदा तौर पे क्या मुशरकीन के लिए थे, क्योंकि ये चीज़ अहमियत की हामिल इस दो तौर पे बन जाती है कि मुशरकीन के रस्म और रवाज को चैलेंज करना, और उस वक्त चैलेंज करना जब इस्लाम कवि हो चुका है, उससे पहले चैलेंज नहीं हुआ, उससे पहले इन्होंने कोई बात नहीं की, ना दीन सुलह हुदैबिया के मौके पे, ना उससे पहले कोई बात थी, ना मक्की ज़िंदगी में कुछ जिक्र किया गया। लिहाजा ये नुक्ता हमारे पास, इधर हिकमत हमारे पास आती है कि माशरे के अंदर अगर एक अमल राइज हो और उसका हमने अगर ख़ात्मा करना है तो उसका ख़ात्मा करने के लिए एक क़ुव्वत के इंतज़ार की ज़रूरत है। इस हिकमत को इस ज़मन में हमें समझना चाहिए कि उस वक्त इसका ऐलान करना चाहिए जब क़ुव्वत इतनी हासिल हो। अगर क़ुव्वत हासिल ना हो तो एक तो अमल नहीं होगा, दूसरा उनका उलझाव और सख्त हो जाएगा और वो फुर्सत ही नहीं देंगे कि दोबारा से ये राह हमवार की जा सके। लिहाजा आए अब हम इस आयत करीमा से बाज़ नताइज लेते हैं और बाज़ इस इनवान से जो सबक हमारे सामने आश्कार होता है तफसीर के बाब में उसको मुलाहिज़ा करते हैं, लेकिन रिवायत के हमरा कि तफसीर कुम्मी की तरफ रजू करते हैं कि तफसीर कुम्मी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इन आयात के ज़िम्न में फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खसूसी तौर पर यह हुक्म दिया कि मैं अल्लाह की जानिब से एक ये इबलाग कर दूँ, यानी जो आयात अल्लाह ने नाजिल की है वो पढ़ के सुना दूँ। चलो ये तो हो गया। दूसरा और हुक्म किया था कि ये बात लोगों तक पहुँचा दें कि बैतुल्लाह का तवाफ़ बरहना नहीं करना, अभी जैसा कि हमने रवायत में पढ़ा था, अलबत्त वो तफसीर फुरात की रवायत थी। नंबर तीन क्या है कि मस्जिद हराम के करीब भी ना मुशरिक आए, इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी किसी ने नहीं आना। ये तीन हमारे पास हुक्म आ गए। यहाँ पे हिकमत को आप देखें, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि रवायत में है कि जब कविया अहलुल इस्लाम, इमाम शाफ़ी ने भी जिक्र किया और ज़ाहिरन एक तहलीली सूरत भी हमारे सामने ये आती है कि जब इस्लाम कवि हो गया तो इस कदर राइज बड़े पैमाने पे जो अहकाम थे उससे टकराव लिया गया। मसलन मदीना के अंदर क़िबला की जब बात आई तो कुरान करीम से बहुत उभारा है। सूरह बकरा में पे दर पे आयात के अंदर क़िबले के तस्करा आया कि क़िबले अव्वल से रुख फेर के बैतुल्ला की तरह बैतुल्ला को क़िबला करार दिया गया। यहाँ पे जो टकराव था वो अहले किताब के साथ था, क्योंकि मुशरिकीन तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके कोई इबादत अंजाम नहीं देते थे, लेकिन मदीना के इर्गिर्द थे यहूद और नसारा, और उनके लिए जो सरजमीन मुकद्दस तरीन सरजमीन थी वो बैतुल मक़दस और यही मस्जिद अक्सा थी, लिहाजा वो उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो वहाँ पर जब इस्लाम कवी हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने जंग जीत ली, मसलन बदर में फातह हो गए, खंदक के मौके के ऊपर शिकस्त दी मुशरकीन को और वो चले गए, नाकाम हो गए। ओहद में भी एक सख्त टकराव हुआ, अव्वल जंग में फाते थे लेकिन जो आखिरी जंग है उसमें मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इससे ये पता लग गया मुसलमानों की क़ुव्वत को अब तोड़ा नहीं जा सकता। जब इस सतह के ऊपर इस्लाम की क़ुव्वत पहुँच गई तो यहाँ पर अब कुफार और यहूद व नसारा उनके मुकाबले में तशरी अल्लाह की तरफ से हुई और क़िबला तब्दील कर दिया गया। अभी भी मस्जिद क़िबलातैन दो क़िबलों से के जो है जहाँ पे ये वाक़या पेश आए उधर बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई और जो ज़ायर और हाजी हैं वो वहाँ पे नमाज अदा करने का शरफ़ हासिल करते हैं। लेकिन इधर आपने हिकमत देखी कि अहकाम हुकूमत अल्लाह की है। अब उसमें क्या मसलहत है कि बैतुल मस्जिद अक्सा को तर्क करके बैतुल्लाह को मरकज़ करार दिया गया। यकीनन अल्लाह ताला की बहुत हिकमतें हैं और हम गौर व फिक्र करके बहुत सारे नुकात भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक हिकमत हमारे सामने बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि कलिमतुल्लाह ही अल उलिया, अल्लाह ही का कलिमा, अल्लाह ही की ज़ात, अल्लाह ही का हुक्म वो गालिब आने वाला है। इसलिए उसके गलबे को जाहिर करने के लिए ये अमल हमारे पास एक हिकमतों में से एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह के हुक्म के गलबे को जाहिर किया जाए। अगर वो सारे के सारे साजगारी और मिलन निसारी ही के तौर तरीक़ों से आगे बात चलाते रहें तो फिर गलबा किसका, ये सही तरह से मालूम नहीं हो सकेगा। इसलिए दीन इस्लाम के गलबे के लिए और अल्लाह सुबहान तआला के हुक्म के गलबे के लिए क़िबले की हम देखते हैं कि क़िबला रुख हो के बैतुल्ला की तरफ क़िबला रुख हो के नमाज़ अदा की जाए और इस तरह से उनकी शरीयत के ऊपर दीन इस्लाम की शरीयत का गलबा और हावी होना, मुसल्लत होना, ये इसको अमली पेराए में सामने आ गया। लेकिन अभी मुशरकीन से टकराव मुश्किल था क्योंकि मुशरकीन और उनके रवाज किसी भी जगह पे, हम मसलन अपने माशरे में बहुत सारे रवाज देखते हैं कि वो नहीं उस जगह पे अगर ना हो या उनसे टकराव करके उसे ख़त्म किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब एक अमल होगा, ख़ुसूसन इबादत के इनवान से। शिया सुन्नी दोनों में ही बहुत बाज़ ऐसी चीज़ें राइज हो जाती हैं कि जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और बनाना चाहिए भी। मिसाल के तौर पे पूरे बदन पे बेड़ियां वगैरह पहन के चलना, कोयलों के ऊपर चलना और उसे एक मातम करार दे देना, या ये बहराइन वगैरह या बाज़ जगहों पे ऐसी चीज़ें राइज हुई कि उन्होंने कीचड़ का तालाब बनाया और उसमें अब या हुसैन कह के स्विमिंग करने की कोशिश करना, या हरमों में सीने के बल चल चल के दाखिल होना, कि इसको उलमा ने तनकीद का निशाना बनाया। हत्ता कि जिस तरह से ये खूनी जंजीर जनी कमा जनी के ऊपर शदीद इख्तलाफ मराजे में, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म ने वाज़े तौर पर हुक्म जारी किया कि ये गम और शोक के तरीक़ों में कभी भी नहीं ये तरीक़ेकार रहा, और अहले बैत अलैहिस्सलाम व असहाबे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसको रस्मी तौर पर कभी भी अंजाम नहीं दिया। हाँ, कोई ऐसा हादसा वाक़या पेश आए कि गम की शिद्दत की वजह से कोई अमल अंजाम पा जाए, वो एक इस्तिस्नाई अम्र है, अगरचे कोई मोतबर हदीस और रिवायत हमारे पास नहीं है, लेकिन गम का तरीक़ेकार नहीं है। नंबर दो, जो अक्कासी होती है मकतब तशय्यो की, वो भरपूर अक्कासी नहीं होती बल्कि एक खूनी खौफनाक अक्कासी होती है। नंबर तीन, ये कदीम ज़मानों से ईसाइयों की रविश चली आ रही है, वो इस तरीके से बाज़ुकात अपने गम का इजहार करते हुए इस तरह की हरकतें करते थे, और ये पहले कौमों में भी था कि कोई जिस्म का हिस्सा काट देंगे, खराशे बेजा तौर पे चेहरे पे डाल देंगे, कान काट लिए, नाक का कुछ हिस्सा काट दिया। तो अहले इस्लाम व दीन इस्लाम व अहले बैत अलैहिम सलाम की तालीमात इस तरीके से नहीं थी, इसलिए रहबर मुअज़्ज़म ने वाज़े तौर पे हुक्म जारी किया कि कमा जनी और ये जो खूनी जंजीर जनी है जो चाकुओं के हमरा होती है वो शरण जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि वो रवाज कि जो हदफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की हकीकी तर्जमानी करने वाले रवाज हैं, उसको उसी तरह से तशवीक दी गई है रहबर मुअज़्ज़म की तरफ से, और ख़ुसूसी तौर पे उसके अहतमाम करने के लिए फरंग साजी की गई। लिहाजा ऐसा नहीं है कि आज़ादारी से एक चीज़ को आप हटा दें और वो लोगों ने राइज की हो और उसके बाद आप उसको किसी न किसी तारीख़ी वाक़े से जोड़ने की कोशिश करें कि महमल पे जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लग गया और खून जारी हो गया, अब बस हर मातमी फिर खून जारी करता रहे, जबकि वो सनदन है भी नहीं, साबित भी नहीं है, और इमाम मासूम से भी वो नहीं साबित। तो खुलासे कलाम, कौमों के अंदर ऐसे रवाज पड़ जाते हैं जैसे अभी बरेलवियों और देवबंदियों में अजीबोगरीब किस्म के रवाज और नज़रियात हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जिसको बिल्कुल गैर माकूल नज़रियात है, बहिश्ती दरवाज़ा है कि उससे हर साल गुजरते हुए कई अफराद मारे जाते हैं, या कब्रों को सजदा करने की तरफ आ जाते हैं। अजीब व गरीब कहानियाँ और मनगढ़ंत दास्तानें और वाक़यात जो उन्होंने ईजाद किए हुए हैं। लिहाजा माशरों में जो रवाज हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम व आइमा अलैहिस्सलाम, ऐसे रवाज जिनमें इन्हराफ, कजरवी या तालीमात इस्लामी की हकीकी तर्जमानी नहीं बल्कि उसके बरअक्स तर्जमानी होती है, उनसे मुकाबला किया दीन इस्लाम ने। लिहाजा दीन इस्लाम का माशरे के अंदर रवाजों से जो टकराव है, ये बहुत कीमती मौजू है जिसका हमें मुतालिया करना चाहिए, ताकि चूँकि रवाज के बगैर माशरा नहीं रह सकता, रवाज तो बनने ही बनने हैं। इबादत बेदून रवाज नहीं होती, इज्तमाई इबादत अंजाम दी जाती हैं, दी जानी चाहिए। दीन सबसे पहले आके तारुफ कराएगा, बहुत खूब। इसके बाद दीन इंसान को वसत देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को जब नाजिल किया है तो शरीयत इस्लामी को आसान बनाया है। अल हनफिया अस समाहा के मोतबर हदीस में वारिद हुआ कि ये दो खसूसियात हैं दीन इस्लाम की। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है, हनफियत है नंबर दो, यानी फितरत के तकाज़ों के तहत है। हनफियत को अगर हम इस ताबीर में लाएँ तो ये सबसे बेहतरीन ताबीर बनती है, क्योंकि फितरत के ऐन तकाज़ों के तहत होने को हनीफन से बाज ने ताबीर किया है। यानी दीन इस्लाम का कोई हुक्म इंसान की फितरत से टकराव नहीं रखता, इंसानियत से ही नहीं टकराव रखता। यानी दीन इस्लाम या शरीयत का हर हुक्म इंसान की इंसानियत की तकमील के लिए है। मसलन रोज़ा हैवानियत को मारता है, इंसानियत को वजूद देता है। मसलन नमाज गफलत को और हैवानियत को मारती है, इंसानियत को वजूद देती है। ज़कात है, खुम्स है, सदक़ात हैं, इज़्दवाजी मसाइल हरामपन को निजात, हरामपन को मार के और उस निजात पा के शरी तकाज़ों के तहत जिससे नसब और नस्ल चल सके, निकाह के ज़रिए से इज़्दवाजी ताल्लुक़ का कायम करने का दर्ज देता। आप दीन इस्लाम का कोई हुक्म नहीं लेके आएंगे मगर ये कि वो फितरत से साजगार है। नंबर दो असमाहतो, समाहा होता है कि जिसमें रुख्सत ज़्यादा दी गई है, फुर्सत ज़्यादा दी गई है, आसानी ज़्यादा दी गई है। मसलन सिर्फ पाँच नमाजें अल्लाह ने पूरे दिन में वाजिब की, पाँच में भी नवाफिल वाजिब नहीं किए, वरना जोहर की नमाज से पहले आठ नवाफिल, आठ रकत नवाफिल, असर की नमाज से पहले आठ रकत नवाफिल, अगर ये वाजिब होते हैं इंसानों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता। फजर सिर्फ दो रकत है, दो रकत नमाज पढ़े ख़त्म, वाजिब अदा हो गया। मगरिब की तीन रकतें, इशा की चार रकतें, जोहर असर की चार रकतें वाजिब, ये कोई बोझ नहीं है इंसान के ऊपर। तमाम सालों में मगरिब, फजर से मगरिब तक, फजर के आगाज़ से मगरिब के आगाज़ तक रोज़े की हालत माह मुबारक रमज़ान में लाजिम करार दी गई, पूरा साल हमारे लिए रुख्सत और छूट है। खुम्स देखें कि अगर बचत हो जाती है पूरे साल के अखराजात करके, उस बचत में भी 80% आपका, हालांकि पूरे साल के अखराजात मुझे चाहिए थे, उससे ज़्यादा तो मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन पूरे साल का खर्च करने के बाद फिर भी मेरे पास वो सारी चीज़ें बच गई। अब जो बच गई हैं उसमें भी 80% दीन इस्लाम कहता है आपका, सिर्फ 20% तुम अल्लाह को दे दो, उसमें से भी 10% गरीब फ़ुकरा मोमिन सादात का है और 10% तुम इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का जो हक है वो दीन के ऊपर मुज्तहिद की इजाज़त से खर्च करो, वो दीन इलाही में खर्च होगा, लेकिन 20% फ़कत। ज़कात भी देखें, पूरे माल का कुछ हिस्सा बनता है, सिर्फ 2.5% नहीं, वो अदाद व शुमार उसके जिन चीज़ों पर वाजिब है उसकी मुनासबत से जुदा हो जाती हैं। लिहाजा आपने मुलाजा किया असमाहा, इसमें इजाज़त दी गई है, रुख्सत दी गई है, फुर्सत दी गई है, ये है दीन शरीयत का। अब दीन शरीयत में ये फुर्सत दी गई है कि आप रवाज ईजाद करो। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाने की ताकीद बहुत रवायात में वारद हुई, बहुत शिद्दत से, और कसीर अहादीस हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गमगीन हो, गम का इजहार करो। अभी रवायात का खुलासा किया, गम का इजहार करो। नंबर दो गिरिया करो, गिरिया मसाइब पढ़ना, गम का इजहार। अच्छा गिरिए का तो हमें पता लग गया कि रोना चाहिए या रोने की शक्ल अल्लाह ताला की खातिर इस हुक्म पर अमल करते हुए बनाए, ये भी पता लग गया मसाइब पढ़ना चाहिए और आगाह करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ गम का इजहार करें, तो गम का इजहार पूरी दुनिया के हर इलाके में यकसा नहीं है, अरबों के अंदर एक अलग तरीके से राइज है, हत्ता कि वो तो आवाज़ ख़वातीन अजीब व गरीब सी अरब दुनिया में बाज़ लगाती हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान या पंजाब या बाकी इलाक़ों में आ जाएं, उधर रवाज अलग है। मसलन सिंध में बाज़ घराने हैं, वो अपनी बेड या चारपाई उल्टी कर देते हैं, सोते ही नहीं हैं। बाज़ सिर्फ दालें खाते रहते हैं, गोश्त खाना ही नहीं है। मुख्तलिफ रवाज हैं। अच्छा, इन रवाजों का जब दीन इस्लाम ये आपको फुर्सत और रुख्सत दे रहा है कि आप गम के इजहार के तरीक़ों को इख्तियार कर लें, तो किस तरीके को इख्तियार करें? इधर दीन आके हमें इतना मुकय्यद करेगा, देखो अव्वल उन ऐसे तरीक़ों को इख्तियार ना करो जो इस्लामी तालीमात से टकराए, हराम के दायरे में आपको ले आए। मसलन आपने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि आपकी जान ही चली गई, मर गए आप, यानी मौत के घाट उससे उतर जाता है। तमाम के तमाम मराजिम मुत्तफिक हैं कि ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं कर सकते। अगर ख़तरा हो किसी एक तरीके को इख्तियार करने से कि मैं मौत का शिकार हो जाऊंगा, वो जायज़ नहीं है। बस पहली चीज़ होगी तालीमात इस्लामी के ख़िलाफ़ वो रवाज ना हो। दूसरा हमारे पास क्या बाब इससे खुल गया, वो ये बाब खुल गया कि इंसानी करामत के, शराफत के या हदफ के ख़िलाफ़ ना हो। आप रवाज ईजाद करें ना दीन तालीम इस्लामी से टकराए, और ना जो दीन तालीम इस्लामी की हिकमतें हैं, मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती और शख्सियत के पेश नज़र जो अहदाफ थे, उससे मुतसादिम और टकराव वाला कोई रवाज आप पैदा ना करें। इधर ऐसा नहीं है कि जो रवाज पैदा करना चाहें चलो कर लें आप, नहीं, कतन ऐसा नहीं है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी सुन्नी तौहीद के नाम पे जिसका गला काटना चाहे चलो काट दिया। जी, मैंने अल्लाहु अकबर कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, तो उन्होंने समझा कि जैसे जानवर को ज़िबा किया जाए तो हलाल हो जाता है, इंसान भी चलो हलाल हो गए। नहीं, ऐसी कोई तौहीद नहीं है। ये दहशतगर्दी, शैतनत, तकफीरियत, ये मुनाफिकत कहलाएगी, लेकिन दीन इस्लाम की तालीमात नहीं है। दीन इस्लाम ने तकरीम की, इंसान को इज्जत दी है, उसकी जान माल को मोहतरम करार दी, यानी कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता जान माल और नामूस को। इसी तरीके से इधर आए कि बाज़ तौहीद के नाम पे जो रवाज ईजाद करना, चलो जी ईजाद कर लिए। बाज़ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवाज ईजाद करना, चलो जी हम ईजाद कर लिया। नहीं, इस तरह इजाज़त नहीं है। या इस तरह से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मकतबे तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अफराद, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे मैंने रवाज ईजाद किया, ईजाद हो जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। इजाज़त किस रवाज की है? अव्वल दीन इस्लाम के आइन मुताबिक हो, नंबर दो कि वो हद अकल दीन इस्लाम से टकराव ना रखता हो, बस इसको यानी हदफ से साजगार हो। अब ये आपने देखा कि रवाज, लेकिन जाहिलाना रवाज बहुत सारे लोग ईजाद कर लेते हैं। माशरे में आप किसी के हाथ पांव फौरन नहीं बांध सकते। बहुत सारे इलाकों में दीन इस्लाम की तालीमात अभी भी कवी तौर पे नहीं पहुंची, लिहाजा वो साल हर साल से जो उनके यहाँ रवाज राइज थे, उन्हीं रवाजों के दरमियान वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बराए नाम दीन इस्लाम के चंद कलिमात अपनी ज़ुबान से अदा कर लेते हैं, चंद उमूर को अंजाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा, सूरह बरात की जो पहली आयत का शान नज़ूल है, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आके जिसका खात्मा शिद्दत के साथ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, वो गलत रवाजों का वहाँ से इनखिला है, गलत रवाजों का को बेदखल करना है माशरे से, गलत रवाजों के खिलाफ क़याम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा इस पूरी गुफ्तगू से ये पहला निचोड़ हमारे सामने आया, हमारे अपने फैमिली में, हमारे अपने ख़ानदान में या हमारे माशरे में जो गलत रवाज कायम हैं, उन रवाजों से हमें दीन इस्लाम व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के दोष के ऊपर हतमन टकराना चाहिए। मतलब जैसे घर में राइज है कि मर्द और जन हाथ मिला लें, ये गलत रवाज है। अगर उस रवाज को अंजाम ना देने से किसी खातून की बेइज्जती होती है या उसे जिल्लत का एहसास होता है, होने दें, क्योंकि गलत रवाज को तोड़ना है हमने। वो जितना गुस्सा गजब हो ठीक है, उसे बर्दाश्त करेंगे, उसकी गालम गलोच, उसकी नाराज़गी, लेकिन ये नहीं करेंगे जाके खातून से हाथ मिला लिया। और इस मसले में बाज़ अहले हदीस मौलाना, उनके यूट्यूब के ऊपर बाकायदा गुफ्तगू पड़ी हुई है, वो उनकी इतनी पस्त सोच है, हाकिम के हवाले से कि उनके नज़र में हाकिम आज है, बस उसके सामने हाकिम के लिए हर चीज़ जायज़ है। अब सऊदी अरब के जो हुकाम है वो जाते हैं ख़वातीन से हाथ मिलाते हैं, तो उन्होंने शिया सुनी एक तासुब में चूँकि दीन को लिया हुआ है, तो ईरान में जो हैं शिया हुकूमत की वजह से वो इस फिकी हुक्म की रियायत करती है, वो आगे हाथ भी करे तो वो अपने हाथ सीधे रखते हैं। और कई ऐसी तस्वीरें हैं कि बड़े मनसब की जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ ममालिक में, मसलन वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखला है, उन्होंने हाथ आगे किया, मसलन जो सदर है शिया सदर उसने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ साथ वो तस्वीर चस्पा करते हैं कि बिन सलमान या इब्न ये जो दीगर बादशाह हजरात आए उन्होंने, या इसी तरह से उर्दगान हैं, हाथ वो ख़वातीन से मिला रहे हैं। अब वो तोजी क्या करेंगे जी, ये हाकिम हैं इन्हें तो मिला लेने में क्या हर्ज है, बाज़ुकात ऐसा करना ही पड़ जाता है, जबकि हक क्या है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया। इसलिए ये हौसला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के प्यारों में हकीकतन है, ये हौसला किसी और में नहीं है। यानी हज़रत अबू बकर को ये आयात दी गई कि वो जाके सुनाएं, लेकिन रास्ते में ही उनसे ले ली गई, क्योंकि ये हक अदा वो कर सकता है जो ख़ुद रसूल है या जो रसूल से रजुल मिन हो उनकी ज़ात से है। और इसी तरह माशरों से हकीकत में टकराव वो सकता है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का प्यारो है। इसलिए इस कला रवायत के इस हिस्से के ऊपर बहुत गौर करने की हमें ज़रूरत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के दरमियान खड़े हो के ये उनके कई सौ साल या कई तवील अरसा दराज जो बातिल रवाज चल रहे थे कि वो बरहना हो के मजबूरी के आलम में जब तवाफ़ करते थे या हालत शिर्क में तवाफ़ करते थे, या इसी तरह दीन इस्लाम ने और जो दीगर उनके बातिल रवाजों को तोड़ा, बड़े नडर हो के बहादुरी के साथ उसका ऐलान किया और कहा कि आज के बाद कोई शख्स भी बैतुल्ला का तवाफ़, खाना काबा का तवाफ़ नंगे हो के बरहना हो के नहीं करेगा, जिसने ये किया इस तलवार के साथ उसको मैं सजा दूँगा। ऐसा ये है कि रवाज के साथ टकराया जाए। हाँ, अब दूसरी हिकमत इसमें, और इसके ऊपर इख्तिताम करते हैं अपनी गुफ्तगू का, कि इसके ऊपर कलाम चूँकि दौरान दर्स इशारतन हो चुका है कि रवाज माशरे के अंदर जितना कसरत से और कुव्वत से फैला हुआ है, उस कुव्वत को तोड़ने के लिए ख़ुद को भी उतने कवी होने का इंतज़ार करना लाजिम है। ना ये कि एक दो बंदे हैं और माशरे में एक रवाज बहुत कुव्वत के साथ फैला हुआ है जाके टकरा जाए, उसका कोई असर ही नहीं होगा। लिहाजा दीन इस्लाम की यह हिकमत बकिया अम्बिया अलैहिस्सलाम के अदवार में भी हमें दीन की नज़र आती है। बस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब नबी खुदा हैं, पेशन गोई पहले थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया, अल्लाह ने नबी बना दिया उन्हें, लेकिन ग़ुलाम जब बन गए अज़ीज़े मिस्र का तो बुतों के साथ टकराव कब शुरू किया? अगरचे अपनी ज़ाती फर्दी शख्सी तौर पे तो पहले रोज़े अव्वल से बुतों से वो टकरा रहे हैं, लेकिन माशरे के अंदर कब बुतों से टकराए? जब उनको ये क़ुव्वत हासिल होगी। इसलिए अंदर ही अंदर बंदे अपने बनाए, अंदर ही अंदर तबलीग की अफराद को जोड़ा, और गरीब तबका जल्द हक की जानिब आ जाता है, क्योंकि जब पेट भरा हो तो शकावत और बगावत इंसानी नफ्स के ऊपर छा जाती है। कुरान की मुतादिद आयात में ये बात जिक्र है कि अल्लाह ताला अगर सबके लिए रिज़्क़ को वसी कर देता तो ये सारे के सारे शकावत की वजह से लड़ झगड़ के मर जाते। या कुरान ने सूरह अलक में बयान फरमाया कि इन्नल इंसान अला यतगा अर्राहु इस्तग़ना, जब बेनियाज देखता है, पेट भरा देखता है, तो फिर तागूत बनना शुरू हो जाए, तुग़यानियत आ जाती है। लिहाजा फ़ुक़रा के अंदर वो शोला बंद होता है, ये नहीं है कि वो बड़े पारसा और बड़े मुत्तकी होते हैं, लेकिन उनमें चूँकि शोला बंद होता है लिहाजा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फ़ुक़रा ज़्यादा जन्नत में जाएंगे कि उनके अंदर बगावत और तुग़यानियत का शोला बड़ा कम था, इसलिए उनको हक की जानिब जाने में उनकी उम्रा की नस्बत आसानी पेश आई। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अफराद को अपने इर्गिर्द किया, मुसलमान किया, दीन की तरफ लाए, वहदानियत का दर्स दिया, अंदर ही अंदर एक क़ुव्वत जन्म लेने लग गई, यहाँ तक कि अब बड़े मर्तबे के ऊपर उनकी क़ुव्वत वजूद में नहीं आ रही थी। जो अमला सियासी है या बड़ा एक बादशाह के अतराफ़ और बादशाह तक रसाई नहीं थी, एक वक्त आया बादशाह तक रसाई हो गई। जब बादशाह तक रसाई हो गई तो अब बरमला तौर पे बुत परस्ती का خاتمہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے اوپر پورا غلبہ آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کفار کے اوپر غلبہ آ گیا تھا، یہود و نصارہ کی کمر خیبر کے ذریعے سے توڑ دی گئی، خیبر فتح ہو گیا، یہود و نصارہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب آ گیا ایک ہی گڑھ شرک کا اور اصل گڑھ، 8 ہجری کو فتح ہو گیا۔ اب جب 8 ہجری کو فتح ہو گیا، دین قوی ہو گیا، تو اب قوی ترین رواجوں کا خاتمے کا وقت اب ہے۔ بس ضعیف ترین رواج وہ پہلے بھی ختم کیے جا سکتے ہیں، قوی ترین رواج اس کے لیے قوت حاصل کرنے کا موقع اور محل اس کا انتظار کریں، لیکن نیچے نیچے قوت حاصل کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی ابھی تو یہ بڑا قوی رواج ہے، اگرچہ باطل، میں اکیلا کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں اور سامنے اس کا ڈھیر ہو جائے، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں وہ معاشرے میں برملہ طور پہ ابھی نہ ٹکرائے، نیچے نیچے لوگوں کو قائل کرے، طاقت کو جمع کرے۔ لہذا وظیفہ خاموش ہونا یا شکار ہونا نہیں ہے، وظیفہ اس وقت یہ ہے کہ خود بچے اور قوت حاصل کرے کہ تاکہ اس سے ٹکرا سکے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔